कुछ दिन शांति से गुजर गए थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अमन को जब से शेफाली की प्रेगनेंसी का पता चला, वो काफी बदल गया था। उसने वो सब गलत आदतें लगभग छोड़ दी थीं। अब नशे और लड़कियों दोनों से दूर रहता था, टाइम पर घर आता, शेफाली के साथ टाइम स्पेंड करता, उसका और अपने बच्चे का ख्याल रखता। उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया था और अब वो पूरे दिल से शेफाली की शिकायतों को दूर करने और उसे खुश करने की कोशिश कर रहा था। अमन के पेरेंट्स भी शेफाली की प्रेगनेंसी की खबर सुनते ही आ गए थे। वो लोग भी बहुत खुश थे और अब उन्होंने फैसला कर लिया था कि यहीं रहेंगे अपने बेटे बहू के साथ, जिससे अमन से ज्यादा शेफाली खुश थी कि अब उसे अकेला नहीं रहना पड़ेगा। सास बहुत अच्छी मिली थी उसे और अब तो वो उससे और भी ज्यादा प्यार करती थी। शेफाली की लाइफ में अब सब कुछ अच्छा चल रहा। एक नए मेहमान के आने की खबर ने उसकी बिखरी जिंदगी और सिसकते रिश्तों में जैसे जान भर दी थी, उसे खुशियों से नवाज दिया था। वो बेहद खुश थी और अपनी जिंदगी के इस खूबसूरत फेस को जी रही थी। सिया अभी शांत थी, अभी उसने कोई नई चाल नहीं चली थी। शायद उसके दिमाग में इस बार कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक चल रहा था। ये शांति तूफान आने के पहले का सन्नाटा था। नित्या और मानव की लाइफ भी मस्त चल रही थी। मानव का सपना पूरा हो चुका था, उसका अपना कैफे खुल गया था। हालांकि अभी वो उसके नाम नहीं हुआ था तो ऑफिशियली वो उसका ओनर नहीं था, लेकिन सारी पावर उसी के हाथ में थी। कायरव उसके काम में इंटरफेयर नहीं करता था। मानव को पूरी आज़ादी थी, वो हर फैसले खुद ले सकता था। कुछ भी करने से पहले उसे कायरव से परमिशन लेने की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन वो डिस्कस ज़रूर करता था। मानव दिन रात कड़ी मेहनत कर रहा था, उसने खुद को काम में झोंक दिया था और उसकी कोशिशों का रिजल्ट भी देखने को मिल रहा था। कैफे बढ़िया चल रहा था, कस्टमर्स का आना जाना जो सुबह शुरू होता रात तक भीड़ सी लगी रहती, फीडबैक भी बढ़िया मिल रहे थे। जो स्पेशल ऑफर्स वो कस्टमर्स को दे रहे थे, जितना कमाल का वहाँ का एटमोसफियर और जैसी बढ़िया सर्विस यहाँ दी जाती थी, हर कोई खासा खुश और इम्प्रेस होकर जाता था। उन्होंने कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं किया था, लेकिन एक बार जो यहाँ आता वो इतना इम्प्रेस होता कि दोबारा लौटकर जरूर आता। सिर्फ आते ही नहीं बल्कि अपने साथ और लोगों को लेकर आते, सोशल मीडिया पर पिक्स और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते, जिससे उनकी फ्री की पब्लिसिटी हो रही थी। और कैफे खुला भी इतने अच्छे लोकेशन पर था, वहाँ की वाइब इतनी कमाल की थी कि बिना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट के वो लोगों के दिल पर अपनी गहरी छाप छोड़ने लगा था। कुछ ही वक्त में आसास काफ़ी फेमस हो गया था। मानव खुश था और इस खुशी में नित्या भी शामिल थी। वो लगभग रोज ही अब कैफे पहुंच जाया करती, मानव की हेल्प करने के लिए हर तरह का काम करती और हमेशा चहकती रहती, जिससे वहां का माहौल खुशनुमा रहता था। इसी बहाने दोनों को साथ में वक्त भी मिल जाता था। नित्या अनिता जी से भी मिल लेती थी। आती वो ड्राइवर के साथ थी, लेकिन उसे सेफली घर ड्रॉप करने की जिम्मेदारी मानव के मजबूत कंधों पर आ गई थी। दोनों एक दूसरे की दिल के जज्बातों से बहुत अच्छे से वाकिफ थे, लेकिन अभी वो ईमानदारी से बस दोस्ती ही निभा रहे थे। मोहब्बत थी और नित्या को उसकी नजदीकियों से कोई एतराज भी नहीं था, लेकिन फिर भी मानव उनके बीच दूरी बनाकर रखता था। ना वो खुद दोस्ती की सीमा पार करता और ना नित्या को करने देता। इनाया और कायरव के लिए भी ये दिन सुकून से गुजरे थे। अमन सुधर गया था और अब वो ना तो कायरव से बदला लेने की कोशिश कर रहा था और ना ही इनाया को हार्म कर रहा था, जिससे दोनों थोड़े रिलैक्स थे लेकिन केयरफ्री या केयरलेस नहीं थे। इनाया तो वैसे ही ये मानने को तैयार नहीं थी कि अमन जैसा शख्स भी कभी सुधर सकता था, और कायरव कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो अभी भी थोड़ा अलर्ट था। इनाया की सिक्योरिटी का ख्याल तो वो रख ही रहा था, साथ ही अमन और सिया पर भी उसकी नज़र बराबर बनी हुई थी। बाकी सब सही ही चल रहा था। शाम का वक्त था, मानव और नित्या दोनों इस वक्त कैफे में ही थे। मानव को कॉल आई तो वो अपने कैबिन में चला गया ताकि बिना किसी डिस्टर्बेंस के बात कर सके। नित्या जाते हुए मानव को देखकर मुस्कुराई और हाथ में ट्रे लेकर कैफे के सामने की तरफ खुले एरिया में आ गई। वो यहाँ आकर हर तरह का काम कर लेती थी, कॉफी बनाना, सर्व करना, फीडबैक लेना, बिलिंग, एवरीथिंग। और जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसने उठाई थी वो था यहाँ का अकाउंट संभालना। अपनी स्टडी का यूज वो यहाँ मुस्तैदी से कर रही थी, जिससे मानव का काफी बर्डन कम हो गया और वो उस टाइम का यूज दूसरी जगह करने लगा ताकि कैफे और बढ़िया चले। आखिर ये उसका सपना था और अब उसकी सारी उम्मीदें इसी पर टिकी थी, इसलिए वो डेडिकेशन से अपना काम कर रहा था। नित्या हाथ में ट्रे पकड़े मुस्कुराती हुई बाहर पहुंची और जिस टेबल से ऑर्डर आया था वहां कॉफी रखकर जैसे ही मुड़ी, पीछे से किसी की आवाज आई, अरे सुनो इतनी जल्दी कहाँ? नित्या पलटी। सामने सूट बूट में बैठा वही कस्टमर था। आंखों में अजीब सी चमक लिए वो उसे कुछ इस तरह देख रहा था जैसे आंखों से ही उसकी पूरी बॉडी को स्कैन कर रहा हो। नित्या को उसका देखने का अंदाज बड़ा अजीब लगा, दिल खुफ्त से भर गया। लेकिन वो कस्टमर था जिसे वो नाराज करके ना तो कोई तमाशा करना चाहती थी और ना ही कैफे की इमेज खराब करना चाहती थी, इसलिए जेंटल स्माइल के साथ उससे मुखातिब हुई। जी कुछ चाहिए सर? वो कुर्सी से थोड़ा आगे झुकाया, नजरें अब भी नित्या के हसीन चेहरे और मखमली बदन पर फिसल रही थीं। कॉफी तो ठीक है, लेकिन आप उससे भी ज्यादा हॉट हैं। नित्या के चेहरे की मुस्कान पल भर में सख्त हो गई। सर प्लीज अपनी लिमिट में रहिए, वो बेपरवाही से हंस पड़ा। अरे इतनी सी बात पर नाराज हो गई, वैसे आपका नंबर मिल जाए तो कॉफी कहीं और भी पी सकते हैं। इतना कहकर वो जानबूझकर उसका रास्ता रोककर उसके करीब आकर खड़ा हो गया। इतने दिनों में पहली बार नित्या ऐसा कुछ फेस कर रही थी। उसका दिल घबराहट के मारे तेज धड़कने लगा, मगर उसने खुद को संभाला और जल्दी से कदम पीछे घसीटे। सर मैं यहाँ कोई सीन नहीं क्रिएट करना चाहती, बेहतर होगा कि आप अपनी कॉफी खत्म करें और इज्जत से यहाँ से रवाना हो जाएं। आवाज धीमी थी, शायद नहीं चाहती थी कि आसपास के लोग उनकी बातें सुने। नित्या अपनी बात पूरी करके जैसे ही जाने के लिए पलटी, वो लड़का फुर्ती से घूमकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। नित्या का पैर हवा में रुक गया और उसकी भौं तन गई। क्या बदतमीजी है ये, रास्ता छोड़ो मेरा। हमेशा हंसती मुस्कुराती रहने वाली मासूम सी नित्या का चेहरा एकदम सख्त था और अंदाज गुस्से से भरा। कस्टमर ने बेहूदगी से ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, रास्ता तो छोड़ दूं, लेकिन तुझे देखने के बाद छोड़ने का दिल नहीं कर रहा। तो जैसे खूबसूरत कमसिन हसीना को यहाँ ऐसे काम करते देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। चल मेरे साथ चल, कहीं तन्हाई में चलकर कॉफी पियेंगे, लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे और तुम मुझे अपनी टेस्ट ड्राइव करवा दियो। बस मुझे खुश कर दियो, फिर मैं तेरी जिंदगी बदल दूंगा। तुझे कभी ऐसे किसी जगह काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रानी बनाकर रखूंगा तुझे रानी। उसकी डबल मीनिंग बातें और खराब नीयत नित्या दोनों ही समझ गई थी। वो कस्टमर होठों पर भद्दी सी मुस्कान सजाए लस्ट भरी नजरों से नित्या को देख रहा था। उसकी ऐसी घटिया बातें सुनकर नित्या का खून खौल उठा। उसने गुस्से में अपने दांत भींच लिए, ट्रे पर उसकी पकड़ कस गई। उसने जलती निगाहों से उसे घूरा और चुपचाप साइड से निकलने लगी। यहीं वो गलती कर गई। उसकी चुप्पी से उस कस्टमर की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उसने जाती हुई नित्या का हाथ पकड़कर उसे झटके से अपनी तरफ खींच लिया और उसके सुर्ख गुलाबी होठों को हैवानियत से चूमने लगा।
नित्या के हाथ से ट्रे छूटकर नीचे गिर गई और दिमाग बिल्कुल सुन हो गया। वो उस शख्स के सीने पर हाथ रखे पूरी ताकत लगाकर खुद से दूर धकेलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो जितना उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती वो उस पर उतना ही हावी होता जाता। नित्या उसकी ताकत के आगे कमज़ोर पड़ रही थी। मानव के अलावा किसी ने उसे छुआ सोचकर ही उसका नाजुक दिल टुकड़ों में टूट गया और आंखों में बेबसी के आंसू उमड़ आए। बाकी सब आराम से बैठे उसकी बेबसी का तमाशा देख रहे थे। टू बी कंटिन्यूड।